के रूप में अब इसका नाम रूप सामने आने वाला है। कौन सा रूप सामने आने वाला है?
इसका नाम है विश्वमाता। विश्वमाता इसलिए कि यह अब नए विश्व को जन्म देने जा रही है।
पुराना विश्व मर गया या मर रहा है, या तो मर चुका या मर रहा है। घिनौना विश्व जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, ऐसे वाले जमाने की बात कर रहा था, ऐसे मनुष्यों की बात कर रहा था जो मरेंगे।
होगा आदमी का कायाकल्प। तो क्या मनुष्य मरेगा या मनुष्य का ईमान मरेगा? बेटे, मनुष्य का ईमान मर जाए या ईमान बदल जाए तो आदमी का कायाकल्प हो सकता है। वाल्मीकि मरेगा। वाल्मीकि को तो नारद ने मार डाला और नए वाल्मीकि को जन्म दे दिया। और उस आम्रपाली को किसने मार डाला? भगवान बुद्ध ने जान से मार डाला और नई आम्रपाली को जन्म दिया। पूतना जो थी उसको भगवान श्रीकृष्ण ने मार दिया था। ताड़का को भगवान राम ने मार दिया था। ठीक इसी तरीके से बुद्ध ने आम्रपाली को मार दिया था।
नहीं महाराज जी,
जान से नहीं मारा था, वह तो जिंदा थी। हाँ बेटे, वह जिंदा तो थी, पर जो आम्रपाली वेश्या थी उसे मार दिया था और उसके स्थान पर नई आम्रपाली बना दी।
उसका क्या नाम था?
उसका नाम था संत आम्रपाली।
संत आम्रपाली सारी की सारी दुनिया में ज्ञान और विज्ञान की वर्षा करती हुई न जाने कहाँ से कहाँ चली गई।
बनेगा नया विश्व। मित्रों,
क्या हो सकता है? दुनिया मरेगी, प्रलय हो सकती है।
हाँ, प्रलय तो होगी।
कैसे होगी?
परशुराम जी ने जैसे कुल्हाड़े से बददिमाग लोगों के सिर काट डाले थे, वैसी ही प्रलय होगी। तो सिर कटेंगे? सिर नहीं कटेंगे।
तब क्या होगा?
सिर बदल जाएंगे, दिमाग बदल जाएंगे। आदमी की अकल और आदमी का ईमान जिस केंद्र बिंदु पर टिका हुआ है, जहाँ स्वार्थों से एक इंच भी नहीं हटना चाहता।
चाहे माला जपें, चाहे रामायण पढ़ें, पर स्वार्थ से एक इंच भी नहीं हटना चाहता।
अपनी क्षुद्रता को एक रत्ती की नोक के बराबर नहीं छोड़ना चाहता। आदमी जानवर है या शैतान?
शैतान चाहे भजन करे, चाहे अमुक काम करे, जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा। फिर क्या होने वाला है?
आदमी अब मरेगा, अब युद्ध होगा। फिर कौन मरेगा? दानव मरेगा, बेअक्ली मरेगी।
बेअक्ली के स्थान पर जो नया विश्व बनेगा, जिसका हम गठन करने वाले हैं, इसमें थोड़े से सिद्धांत हैं।
त्रिपिटक गायत्री के 3 सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत हैं? अभी हम आपको बता तो रहे थे, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज। अच्छा, तो यही है सिद्धांत? हाँ बेटे, यही सिद्धांत हैं। और फिर हैं व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये भी सिद्धांत हैं।
समझदारों की गायत्री।
मित्रों,
गायत्री के 3 चरण हैं। इसे त्रिपिटक कहते हैं।
त्रिपिटक की 3 धाराएं जब हमारे व्यवहारिक जीवन में अप्लाइड होंगी तो इनका यही स्वरूप बन जाएगा।
नहीं साहब, वह तो हंस पर बैठकर आएंगी और कबूतर पर बैठकर आएंगी और नोट के बंडल लेकर आएंगी और औलाद लेकर आएंगी।
अरे बके मत, चुपचाप रह। ऐसे नहीं आती गायत्री माता।
नहीं साहब,
गायत्री माता रात को रुपये का पोटला लेकर आएंगी और सवेरे बेटा लेकर आएंगी और सवेरे मुकदमे की फाइल का निपटारा करके रख जाएंगी।
और परसों प्रमोशन करा जाएंगी उल्लू कहीं के।
मित्रों, जब गायत्री माता आएंगी तब क्या करेंगी?
गायत्री माता आएंगी तो समझदारों के लिए अलग आएंगी, पिछड़े लोगों के लिए, बैकवर्ड लोगों के लिए अलग आएंगी। पिछड़े लोगों की, बैकवर्ड लोगों की गायत्री माता अलग हैं। वह कौन सी हैं? जिसे मैं अभी आपको बता रहा था, वह बैकवर्ड लोगों की हैं। समझदार लोगों की गायत्री माता वह नहीं है। समझदार लोगों की गायत्री माता कैसी हैं? ऐसी हैं जो हमारे ज्ञान क्षेत्र में बौद्धिक क्रांति के रूप में आती हैं, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में नैतिक क्रांति के रूप में आती हैं और हमारे सामाजिक जीवन में सामाजिक क्रांति के रूप में आती हैं।
बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि यह गायत्री के 3 चरण हैं। 3 विशेषताओं वाला विश्व। तो महाराज जी, सारे विश्व का क्या स्वरूप होने वाला है? भविष्यवाणी कीजिए, भविष्य बताइए।
बेटे, हम यूटोपिया के लेखक तो नहीं हैं कि भविष्य बताते फिरे, पर चलिए, आप भविष्य की बातें सुनना ही चाहते हैं तो मैं यह कहता हूँ कि युगशक्ति गायत्री का जब उदय होगा तो आप अपने आप को तैयार कीजिए। किस बात के लिए तैयार करें? 3 बातों के लिए तैयार कीजिए। विश्वमाता के पेट से नए विश्व की जो रूपरेखा प्रकट होने वाली है, जो सोने का अंडा पैदा होने वाला है। गायत्री माता के पेट से जो नया बच्चा पैदा होने वाला है, नया विश्व बनने वाला है, उसके आधार क्या होंगे?
चलिए मैं उसकी झांकी करा दूं।
मुझको तो मालूम नहीं कि आप विश्वास करेंगे भी कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगला आने वाला जो विश्व है ठीक इसी प्रकार आएगा। इसमें 3 विशेषताएं पाई जाएंगी।
क्या विशेषताएं पाई जाएंगी? उसके 3 सिद्धांत होंगे, समता, एकता और शुचिता। समता का युग।
समता कैसी?
बेटे, अगला जमाना समता का आएगा, तैयारी कीजिए।
दुनिया में समता तीन तरीके से पाई जाएगी।
पहली, जाति की समानता, जाति के आधार पर आपका बड़प्पन खत्म हो जाएगा।
नहीं साहब, हम तो ब्राह्मण हैं।
बेटे तुम्हें मुबारक।
हम कब कहते हैं कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, और आप बनिए हैं। आप बनिए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है छोटे, खबरदार, आइंदा यह बात कही।
आप ब्राह्मण हैं तो रह सकते हैं। आप अध्यापक का काम कीजिए और आप दुकानदारी का काम कीजिए। बड़े कहने से कोई बड़ा नहीं हो सकता।
नहीं साहब, हम बड़े हैं।
बेटे, बड़ा आदमी होगा तो गुणों की वजह से, कर्म की वजह से होगा। आदमी जन्म की वजह से बड़ा नहीं हो सकता। अगले दिनों में क्या होगा?
बेटे, जाति और वंश की समता आ जाएगी। नीचा ऊंचा जाति के आधार पर नहीं रहेगा।
नीचे और ऊंचे रहते थे और रहेंगे और रहना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर नीचे नहीं रहेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि अगला जमाना जो आ रहा है, उसमें जाति के आधार पर कोई बड़ा नहीं कहलाएगा और जाति के आधार पर कोई छोटा नहीं कहलाएगा। जाति ही नहीं, लिंग की भी। नए युग में और क्या होगा?
समता जो आएगी तो कैसे आएगी? जाति के साथ ही लिंग की समता आएगी।
लिंग से क्या मतलब है? नर और नारी से है। नर और नारी दोनों की समता होगी। हम जो विश्वक्रांति करने वाले हैं और जो विश्वमाता का अवतार होने वाला है, उसमें नर और नारी का स्तर एक हो जाएगा।
प्रेम मोहब्बत बेशक रहेगी और अनुशासन भी रहेगा। कैसा अनुशासन रहेगा?
जैसे राम और भरत के बीच में था। राम भरत के गुलाम थे और भरत राम के गुलाम थे। दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए थे, दबाव से बंधे हुए नहीं थे।
नर और नारी अब दबाव से बंधे नहीं रहेंगे। दबाव से नहीं बंधेंगे, बंधेंगे तो मोहब्बत से बंधेंगे। एक दूसरे के ऊपर न्योछावर होने वाले होंगे।
अगले दिनों में लिंग की असमानता नहीं रहेगी। नहीं महाराज जी, वर्तमान कानूनों में और क्या काम होगा?
बेटे, वर्तमान कानूनों में यह सुधार हो जाएगा कि दोनों के लिए एक से कानून बन जाएंगे। अगर घूंघट स्त्रियों के लिए रहना होगा तो यही मर्दों पर भी लागू हो जाएगा।
नहीं साहब, हम तो अपनी औरतों को घूंघट करवाएंगे।
बेटे जरूर करवाना, पर इसके लिए भी तैयार रहना कि आप सब लोगों को भी घूंघट मारकर चलना होगा।
नहीं महाराज जी, हम तो नहीं मानेंगे।
तो फिर बेटे, स्त्री का भी मुंह खोलना पड़ेगा। मित्रों, औरत के मरने के बाद मर्द का ब्याह होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, लेकिन मर्द के मरने के बाद में औरत का भी ब्याह होना चाहिए।
नहीं महाराज जी,
यह तो नहीं हो सकता। बेटे, यही होगा।
नहीं साहब, मर्द के मरने के बाद में औरत को सती होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है, बेचारी विधवा जी करके क्या करेगी। विधवा को भी मरना चाहिए।
पति के बाद फांसी लगाकर मर जाए तो क्या, और जहर खा करके मर जाए तो क्या, जल में डूब मरे तो क्या?
चलेगा। हाँ बेटे, यह रिवाज अच्छा हो तो चलना चाहिए, लेकिन साथ में एक और रिवाज चलना चाहिए।
क्या चलना चाहिए?
अगर स्त्री मरे तो मर्द को भी मरना चाहिए। मर्द को भी सती हो जाना चाहिए। महाराज जी, अगर मर्द भाग जाए
तो सब जाएं और उसको पकड़कर लाएं, जैसे पागल कुत्ते को पकड़कर लाते हैं, और वैसे ही बांधकर उसको जला दें उस औरत के साथ।
नहीं महाराज जी, यह कैसे हो सकता है? अरे बेटे, यही होगा। यदि पतिव्रत धर्म जिएगा तो पत्नीव्रत धर्म भी जिंदा रहेगा।
अगर एक आदमी 10 रखेले रख करके भी राजपूत हो सकता है, तो फिर एक औरत 5 पांडव नहीं 25 पांडव रख करके भी स्त्री सती हो सकती है।
अगले दिनों यही होगा।
आ रहा है नया जमाना।
मित्रों, अगले दिनों यही होगा। इंसाफ का जमाना आएगा, विवेकशीलता का जमाना आएगा, श्रद्धा का जमाना आएगा, और वह जमाना आएगा जिसमें कि आजकल का आदमी तिलमिला जाएगा।
नए युग में जाति और वंश की परंपरा में फर्क रहेगा?
नहीं बेटे, फर्क नहीं रहेगा। दोनों को अगले दिनों एक रहना पड़ेगा।
बेटे, हम ऐसा जमाना ला रहे हैं। हम नहीं ला रहे हैं, महाकाल ला रहा है, समय ला रहा है, युग ला रहा है, और वह अवश्य आएगा, आप चाहे तैयार हों या न हों।
वही समता का जमाना आएगा, आर्थिक समता का युग। महाराज जी,
और कौन सी समता आएगी?
बेटे, एक और समता आएगी।
पैसे के हिसाब से विभाजन होगा। तो क्या आपका इशारा साम्यवाद की ओर है?
हाँ बेटे, पैसे के मामले में लगभग मेरा इशारा यही है कि जो कमाएगा सो खाएगा।
नहीं साहब,
हमारे पास बहुत संपत्ति है, हम ब्याज भाड़े की आमदनी करेंगे।
नहीं बेटे, अब यह नहीं हो सकेगा। रुपये से रुपया नहीं कमाया जाएगा, और जो संपदा बाप छोड़कर मरेगा वह जबत होगी।
पहले भी धन जबत होता था।
पहले समाज इकट्ठा होता था और यह कहता था कि इसका बाप मरा है और दौलत छोड़कर मरा है, इसका क्या होना है?
इसका फैसला समाज करता था।
अगर बच्चे अपंग हैं, अपाहिज हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, तो इसमें से बच्चों को मिलना चाहिए और अगर इसके बच्चे समर्थ हो चुके हैं और कमाने लगे हैं तो एक कानी कौड़ी भी इनको नहीं मिलनी चाहिए। फिर इस पैसे का क्या होगा? बेटे, अब तो इसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं और इस पर मृत्यु टैक्स लग रहे हैं। आगे आने वाले जमाने में क्या हो जाएगा?
सारी संपत्तियां प्राचीनकाल के तरीके से जब्त हो जाएंगी। प्राचीनकाल में भी जब्त होती थी, जब श्राद्ध होते थे तब। मित्रों,
श्राद्ध का मतलब ही यह था कि बाप ने अगर पैसा कमाया है और छोड़ा है तो वह पैसा बाप के कल्याण करने के लिए अच्छे कामों में खर्च हो जाना चाहिए। नहीं साहब,
रिश्तेदारों को मिलना चाहिए।
रिश्तेदारों को क्यों मिलना चाहिए?
जवाब दीजिए।
नहीं साहब,
बेटे को मिलना चाहिए।
बेटे को क्यों मिलना चाहिए?
जवाब दीजिए। समाज को जब आवश्यकता है तो फिर समाज को क्यों नहीं मिलना चाहिए?
नहीं साहब,
बेटे को मिलना चाहिए।
यह बेटे गलत बात है।
इसीलिए मित्रों,
क्या होने वाला है?
पहले वाला जमाना जिसके लिए मैं आगाह करता हूँ, विश्वमाता तो अभी आपको खेल खिलवाड़ मालूम पड़ती है।
आप तो 3 माला 11 माला कर लेते हैं। यह क्रांति नहीं है, मानव जाति की क्रांति विश्वमाता लाएगी और वह जब आएगी तो इसी रूप में आएगी।
तब हर आदमी मशक्कत करेगा, मशक्कत की कमाई खाएगा। जो आदमी मशक्कत की कमाई खाएगा उसको न शराब पीने की आदत होगी, न वह वेश्यागामी हो सकता है,
न वह अय्याश हो सकता है, न बदमाश हो सकता है, न वह अमुक चीज पी सकता है। यह हराम का पैसा है जो दुनिया भर की खुराफातें सिखाता है।
एकता का होगा उद्भव। मित्रों,
अगले दिनों विश्व में क्या होने वाला है?
विश्वमाता का जो यह अवतार होने वाला है, इसका एक आधार है समता
और दूसरा आधार है एकता। अब हम बिलगांव के भिन्नताओं के कटघरे से अलग निकलते हैं और एकता की दिशा में चलते हैं। हम कैसे चलते हैं?
एक राष्ट्र, एक भाषा और एक संस्कृति।
दुनिया में संस्कृति रहनी है तो एक ही रहनी चाहिए,
चाहे वह हिंदू की हो या ईसाई की,
किसी की भी हो एक रहेगी। नहीं साहब,
हम हिंदू भी रहेंगे और ईसाई भी रहेंगे
तो आप एक दूसरे का खून पियेंगे और एक दूसरे के लिए गलतफहमी पैदा करेंगे।
सांस्कृतिक एकता की ओर चलिए। राष्ट्र को एक होना चाहिए।
जगह जगह जितने भी राष्ट्र अलग अलग रहेंगे तो आपस में लड़ेंगे और फौजदारी करेंगे और खूनरेजी करेंगे।
अतः सारे विश्व की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और एक गवर्नमेंट के अंतर्गत पुलिस रहनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट गड़बड़ी करे और दूसरे पर हमला करे, वहां राष्ट्रसंघ की पुलिस जाएगी और उसे पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी।
नहीं साहब, हमारी सेना अलग है और आपकी सेना अलग है। आपकी सेना अलग नहीं हो सकती।
यही है विश्वमाता। मित्रों, जो अगला जमाना आएगा मैं उसकी बात कहता हूँ। एकता के साथ ही आदमी की एक संस्कृति होगी, एक संस्कृति, एक राष्ट्र और एक भाषा होगी।
अभी आप गूंगे बहरों के तरीके से भाषा के संबंध में दिखते हैं। आप दक्षिण भारत में रहते हैं और आप उत्तर भारत में रहते हैं। आप तमिल बोलते हैं और हम मराठी बोलते हैं। बोलिए, क्यों साहब आप गूंगे हैं? गूंगे तो नहीं हैं, पर आपकी भाषा हम नहीं जानते समझते। हम एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानते।
सारे मनुष्य जाति के बीच खाई पैदा करने वाली ये भाषाएं हैं।
अगली बार जो भाषा होने वाली है, एक भाषा होने वाली है। मैं आपसे यही कहने वाला था।
मैं आपको विश्वमाता की झांकी करा रहा था। अगला वाला जो विश्व आएगा, इसमें हर आदमी के नैतिक उत्तरदायित्व होंगे, जिसमें समता और स्वच्छता के सिद्धांत होंगे। आदमी एक दूसरे को प्यार करेगा,
एक दूसरे की सहायता करेगा। आदमी आदमी का शोषण और एक दूसरे का खून पीने की आदत को बंद करेगा। आपको हमारा खून नहीं पीना है और न हमें आपका खून पीना है। हमको एक दूसरे की मदद करनी है, आपको हमारी मदद करनी है और हमें आपकी। अगर यह विचार दुनिया में आ जाए तो आप देखेंगे कि दुनिया में कैसी शांति आती है। यह एक सपना है जो साकार होगा।
मित्रों,
अभी जो पैसा टैंक बनाने में लग रहा है, एटम बम बनाने में लग रहा है, वह पैसा ट्रैक्टर बनाने में लगाया जा सकता है। जो पैसा तोपों को बनाने में लगाया जा रहा है, वह पंप बनाने में लगाया जा सकता है। जो लाखों आदमी मरने और मारने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वे माली का काम कराने के लिए और अध्यापक का काम कराने के लिए और शिल्पी का काम कराने के लिए और इंजीनियर और ओवरसियर का काम कराए जाने के लिए लगाए जा सकते हैं। सिर्फ आदमी के ईमान में एक बात बदल जाए, आदमी के समझ में एक बात आ जाए कि हमको आपका खून नहीं पीना है, वरन हमको आपकी सहायता करनी है, आपकी मदद करनी है, आपकी सेवा करनी है। यह दृष्टि अगर बदल जाए कि एक दूसरे की सहायता करेंगे तो बेटे दुनिया कितनी खुशहाल हो सकती है,
कितनी उन्नतिशील हो सकती है।
मैंने आपको एक सपना दिखाया है।
गुरुजी, सपना? हाँ सपना, गलत या सही? सही। अगला दिन बेटे यही आएगा।
हम तेजी के साथ उस ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आप यह देखेंगे कि ये सपने, जो आज आपको सपने दिखाई पड़ते हैं, कल या परसों साकार होकर के रहेंगे।
गायत्री का तत्वज्ञान समझें, समझाएं। मित्रों,
इसे साकार करने का श्रेय किसको मिलने वाला है?
गायत्री माता को, युगशक्ति गायत्री को।
और उससे भी ज्यादा श्रेय आप लोगों का होगा, जो आज साहसपूर्वक अपना समय देने के लिए, श्रम देने के लिए और शक्ति देने के लिए तैयार रहते हैं। अब हमको और क्या समझना पड़ेगा? बेटे, आपको और कुछ समझना नहीं है।
गायत्री मंत्र का अर्थ, गायत्री मंत्र की शिक्षा, गायत्री मंत्र की फिलॉसफी, गायत्री मंत्र का तत्वज्ञान, बस इतना ही आप समझते चले जाएं, तो नए युग के लिए सारे के सारे शिक्षण, व्यक्ति निर्माण के शिक्षण, परिवार निर्माण के शिक्षण, समाज निर्माण के शिक्षण, बौद्धिक क्रांति के शिक्षण, सामाजिक क्रांति के शिक्षण, आर्थिक क्रांति के शिक्षण, नैतिक क्रांति के शिक्षण, सारे के सारे तत्व इसके भीतर मौजूद हैं। आप गायत्री की व्याख्या करना शुरू कर दीजिए। बेटे, आपने हमारा गायत्री महाविज्ञान पढ़ा नहीं है।
इसके दूसरे खंड में गायत्री स्मृति है। उसमें 24 अक्षरों के अर्थ हमने बताए हैं।
उसमें सारी की सारी समाज व्यवस्था, नीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि कोई भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं है। गायत्री गीता आप पढ़ लीजिए।
उसमें केवल 13 श्लोक हैं।
गायत्री के 9 शब्द, 3 व्याहृतियां और 1 इनकी व्याख्या करते हुए 13 श्लोक हैं।
इन 13 अक्षरों में सारी की सारी व्यवस्था, तत्वज्ञान बता दिया गया है।
इसे आप पढ़ लीजिए।
मंत्रार्थ बताएं, जीवन में उतारें।
महाराज जी, इतना तो हमको याद नहीं रहेगा।
तो आप जाने दीजिए, न याद रखें, लेकिन जहां कहीं भी जाएं, गायत्री मंत्र की शिक्षा दें। उपासना भी बताएं, विधियां भी बताएं, जप करना भी बताएं, ध्यान करना भी बताएं, संध्या करना भी बताएं।
पर एक चीज भूले नहीं, गायत्री मंत्र का क्या मतलब होता है?
क्या अर्थ होता है?
यह जरूर बताएं।
लोगों से यह भी कहें कि केवल अर्थ को सुन लेना ही काफी नहीं है, रामायण सुन लेना ही काफी नहीं है,
भागवत सुन लेना ही काफी नहीं है,
अखंड कीर्तन सुन लेना ही काफी नहीं है। अखंड कीर्तन को जीवन में उतार लेना, रामायण को जीवन में उतार लेना, गीता को जीवन में उतार लेना भी आवश्यक है। अगर आपने इनको जीवन में उतारना शुरू न किया और केवल सुनने का महात्म्य मान लिया कि सत्यनारायण की कथा सुनने से वैकुंठ को जाते हैं,
भागवत को सुनने से वैकुंठ को जाते हैं। बेटे, अगर आपने यह मान्यता रखी तो गजब हो जाएगा। फिर आदमी सुनने से ही संतोष कर लेगा।
केवल सुनने से ही संतोष नहीं किया जा सकता। सुनना उपयोगी तो है, सुनने का महात्म्य भी हम बता सकते हैं, लेकिन लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि सुनना ही काफी नहीं है। इस मंत्र में है सारा ऋषियों का ज्ञान। बुखार की दवाई कुनैन है।
सुन लिया। हाँ साहब, सुन लिया।
बता दिया।
हाँ साहब, बता दिया।
अब क्या?
अब तो आप अच्छे हो जाएंगे।
बुखार की दवा कुनैन है, यह आपने सुन लिया?
हाँ महाराज, धन्य हो महाराज।
सत्य वचन महाराज।
मलेरिया इससे अच्छा हो गया?
नहीं साहब, अच्छा तो नहीं हुआ।
क्यों अच्छा नहीं हुआ? कल तो हमने आपको बता दिया था और आप भी कह रहे थे कि सत्य वचन महाराज, फिर क्यों अच्छा नहीं हुआ?
अरे महाराज जी,
खाया नहीं, खाया नहीं तो अच्छा नहीं हो सकता। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसको आप जबान की नोक से बार बार रिपीट करते चलें और जीवन को सच से दूर रखें, आचार से दूर रखें, व्यवहार से दूर रखें, सिद्धांतों से दूर रखें और यह सोचे कि मंत्र जादू दिखा सकता है। तो बेटे, ऐसा मंत्र पहले भी कोई नहीं था और अभी भी नहीं है और कभी भी नहीं हो सकता। जिसके शिक्षण को हम जीवन में नहीं उतारें और अक्षरों को रिपीट कर दें और उससे फायदा उठा लें। बेटे, इससे कैसे फायदा मिल सकता है? अक्षरों को रिपीट कर देंगे और हमको फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अक्षरों को रिपीट करना काफी नहीं है, अक्षरों को रिपीट करना आवश्यक तो है, उचित भी है, महत्वपूर्ण भी है, पर काफी नहीं है। यह अधूरा है, एकांगी है।
अक्षरों को रिपीट करने के साथ साथ उसे जीवन में भी उतारना चाहिए। उतारने के लिए उसके प्रयोग के साथ साथ हमको फिलॉसफी भी जाननी चाहिए। आपको सर्वसाधारण के पास जाना चाहिए और गायत्री मंत्र का शिक्षण आपको समझाना चाहिए। इसके अंदर सारा का सारा तत्वज्ञान भरा पड़ा है जो प्राचीन काल में ऋषियों के पास था।
आज इसे सुव्यवस्थित रखना आवश्यक है। उज्ज्वल भविष्य की संरचना के लिए यही तत्वज्ञान ऐसा है। अगर आप इस प्रकाश को फैला सके तो दुनिया का अंधकार आसानी से दूर किया जा सकता है।
क्रमशः समापन अगले अंक में। गायत्री मंत्र की सही शिक्षा समझें।
विगत 3 अंकों से आप इस विषय पर गुरुवर के विचार पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने शांतिकुंज में उपस्थित साधकों के मध्य व्यक्त किए थे।
गायत्री मंत्र के जन जन तक विस्तार एवं इसी के साथ प्रज्ञावतार के विस्तार की व्याख्या पूज्यवर इस प्रवचन के द्वारा कर रहे हैं।
इस समापन किश्त को पढ़ने के पूर्व यह जाने कि उनने पूर्व में क्या कहा।
उनने अनेक उदाहरणों के साथ अवतारी सत्ताओं के प्रकटीकरण की भूमिका बताई तथा अभी तक हुए 9 अवतारों की युगानुकूल व्याख्या दी।
वे कहते हैं कि आज की समस्याएं और भी विषम हैं और निरंतर बदतर होती जा रही हैं।
आज अनेक कुप्रथाएं समाज में हैं, अचिंत्य चिंतन मानव को दुर्गति की ओर ले जा रहा है। मनुष्य तनावग्रस्त है,
अविश्वास का शिकार हो गया है। ऐसे में अगला दशावतार समूह चेतना के रूप में, विवेक के रूप में होने जा रहा है।
वे कहते हैं कि युग शक्ति गायत्री का अवतरण होगा तो मनुष्य का व्यक्तित्व परिष्कृत होगा, उसमें देवत्व जागेगा। दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मानव बदल जाए। उनने कहा कि पूरे परिवार में संस्कार का विस्तार ही उपासना का लक्ष्य होना चाहिए। इसी से धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनेगा, नया विश्व बनेगा। समझदारों की गायत्री तृप्ता की 3 धाराओं को लेकर आएगी और एकता समता का युग होगा। हम सबका आज का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है गायत्री मंत्र की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाएं।
अब आगे पढ़ें।
सबसे सुंदर नाम भगवान का ओम। महाराज जी, गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है?
बेटे चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है। गायत्री के 4 चरण हैं। इसमें एक हिस्सा इसका शीर्ष भाग है।
शीर्ष कौन सा है? ओम भूर्भुवः स्वः।
इसका क्या अर्थ है, क्या फिलॉसफी है? आप हर एक को समझाना और अपने जीवन में भी उतारना, क्या अर्थ है इसका?
बेटे, इसका अर्थ यह है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है।
इस छोटे से ओम के माने हैं भगवान
और भूर्भुवः स्वः को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। आदमी को अगर व्यक्तिगत माने तो इसके 3 हिस्से हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण।
3 हिस्सों में आदमी बंटा हुआ है।
भूर्भुवः स्वः स्थूल सूक्ष्म और कारण है।
जिस तरह से आदमी का व्यक्तिगत जीवन 3 हिस्सों में बंटा हुआ है, उसी तरह यह संसार भी 3 हिस्सों में बंटा हुआ है।
कौन सा? भूलोक, भुवह लोक और स्वलोक। एक ऊपर वाला लोक, एक नीचे वाला लोक और एक बीच वाला लोक, अर्थात ब्रह्मांड अथवा पिंड।
दोनों में से पिंड या ब्रह्मांड के अर्थ में आप चाहें तो भूर्भुवः स्वः कह सकते हैं। इन सब में एक ही सत्ता समाई हुई है और इसका नाम है ओम।
ओम भगवान का सबसे बड़ा एवं सबसे सुंदर नाम है। ओम से निकली 9 शाखाएं।
सृष्टि के अंतराल में से जो आवाजें आती हैं, वे ऐसी होती हैं जैसे कि पेंडुलम का खटखट चलता रहता है। इसी तरीके से प्रकृति और पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो सूक्ष्मदर्शियों ने देखा है कि उसमें से एक आवाज आती है। जैसे घंटे घड़ियाल में चोट मार देते हैं और झंझनाहट की आवाज होती है, एक शब्द उठता रहता है। उसी के आधार पर ओ 3 मक का विस्तार हुआ है। जब हम खाना खाकर के पूर्ण हो जाते हैं और पूर्णाहुति करते हैं तो ओ 3 मक शब्द निकलता है।
ओम भगवान का सबसे बड़ा नाम है।
गायत्री मंत्र में पहला नाम इसी ओम का है।
फिर ओम के 3 बच्चे हो गए भूर्भुवः स्वः।
3 बच्चों के 3 पत्ते हो गए, डालियां हो गई।
इसके नाम है तत्स्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह 3 पत्ते तीनों के मिलाकर 9 पत्ते 9 डालियां हो गई। मूलतः ओम सर्वत्र व्याप्त है।
यह फिलॉसफी है।
आस्तिकता अर्थात ईश्वर विश्वास। मित्रों,
यह दर्शन क्या है?
इसका नाम है आस्तिकता। आस्तिकता का क्या अर्थ होता है?
आस्तिकता से क्या मतलब है? दुनिया में आस्तिकता की कई फिलॉसफियां हैं।
आस्तिकता माने भगवान पर विश्वास। भगवान का भजन नहीं, विश्वास। विश्वास के साथ भजन हो तो मुबारक, लेकिन अगर बिना विश्वास के साथ भजन हो तो उसका क्या मूल्य रह जाता है? महाराज जी,
विश्वास क्या होता है और भजन क्या होता है? बेटे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
जमीन आसमान का फर्क ऐसे आदमी में होना संभव है जो भजन तो बहुत सारा करता हो परंतु भगवान पर विश्वास बिल्कुल न हो।
और ऐसे आदमी में होना भी संभव है जो भगवान का भजन न करता हो लेकिन पूरी तरीके से भगवान का विश्वासी हो। विश्वास और भजन दो बातें हैं। मुकुट और साफा अलग बातें हैं और हमारा शरीर अलग बात है। दोनों को मिला दें तो अच्छी बात है। भजन में विश्वास को मिला दें तो फिर क्या कहने का है, सोने और सुगंध का मेल है। लेकिन वास्तव में ये दोनों चीजें अलग हैं।
न्यायकारी ईश्वर ओम माने भगवान जो सारे विश्व में संव्याप्त है।
इसका क्या अर्थ होता है? इसका एक ही अर्थ होता है कि कण कण में भगवान विद्यमान है। और वह भगवान कैसा है?
उस भगवान का एक ही नाम सही है, न्यायकारी। न्यायकारी भगवान सब जगह समाया हुआ है।
आज आस्तिकता खत्म हो गई है।
कर्मफल को लोग भूल गए। जबकि न्यायकारी भगवान सब जगह समाया हुआ है, अर्थात कर्मफल की सच्चाई इतनी वास्तविक है कि इसको हटाया नहीं जा सकता।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके कर्मों की सच्चाई आपके सामने आकर रहेगी। भगवान की प्रसन्नता एक बात पर टिकी हुई है कि आपका कर्म क्या है, कैसा है। भजन पर नहीं, कर्म पर भगवान की प्रसन्नता टिकी हुई है। अगर आप यह सब समझ लें तो आस्तिकता का प्राण आपके पास आ गया। न्यायकारी भगवान सब जगह समाया हुआ है, इसलिए आप छिप करके भी कोई काम नहीं कर सकते। छिप करके आप उससे बच सकते हैं क्या? छिप करके भी आप उससे बच नहीं सकते। जो बातें समाज की जानकारी में आ जाती हैं, पकड़ में आ जाती हैं, उन पर तो मुकदमा चल सकता है, लेकिन छिप करके कर लिया, इसमें क्या बात है बेटे? उससे कोई बात छिप नहीं सकती। इंसान से आप छिपा सकते हैं, भगवान से नहीं छिपा सकते।
भक्त वत्सल भी, रुद्र भी। मित्रों, यह मान्यता ओम भूर्भुवः स्वः के अंतर्गत आती है। सर्वव्यापी एक, न्यायकारी दो। अगर आप भगवान के यही दो गुण मान लें तो भी काफी है। महाराज जी, हमने तो सुन रखा है कि भगवान भक्तवत्सल होते हैं।
अगर आपने यह सुन रखा है कि भगवान भक्तवत्सल होते हैं, तो मैं एक और नाम जोड़ना चाहूंगा,
फिर आपकी बात पूरी हो जाएगी। भक्तवत्सल के साथ एक और नाम है, रुद्र।
बेटे, इन दोनों का पेयर है। अच्छे काम करने वालों के लिए भगवान भक्तवत्सल हैं और बुरे काम करने वालों के लिए रुद्र हैं। रुद्र कैसे होते हैं? जो हंट मारते हैं और खाल उखाड़ डालते हैं। अरे, ये भक्तवत्सल हैं कि जल्लाद हैं? आपने देखा नहीं है, शमशान घाट में जाइए, अस्पतालों में जाइए, दुर्घटना स्थलों पर जाइए, अंधों को देखकर आइए कि भगवान भक्तवत्सल हैं कि जल्लाद हैं।
तो महाराज जी,
यह है क्या? कुछ भी नहीं है। आपके जैसे कर्म हैं, कर्म के हिसाब से भक्तवत्सल भी हैं और कर्म के हिसाब से वे जल्लाद भी हैं। आपके कर्म जो कुछ भी हैं, उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा।
हुई है क्रांति भगवान के बारे में। मित्रों,
बौद्ध संस्कृति में और जैन संस्कृति में भगवान के बारे में जो गलत मान्यताएं थीं, इनसे उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान दया ही करते हैं, पर सब पर दया नहीं करते, मार भी लगाते हैं। नहीं साहब, जो कोई पूजा करता है उसको निहाल कर देते हैं। यह गलत बात है। इसकी बगावत पहले से हो चुकी है और भगवान के बारे में क्रांति हो चुकी है।
जैन क्रांति और बौद्ध क्रांति दोनों क्रांतियां ऐसी हैं जिसमें भगवान के उस स्वरूप को, जिनको भक्ति भक्ति चिल्लाते हैं, भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए और पैसा लीजिए, भक्ति का मध्यकालीन जो यह अनाचार था, इसके विरुद्ध जैन क्रांति हुई थी, बौद्ध क्रांति हुई थी। हिंदू धर्म में इसके पहले भी एक क्रांति हुई थी। दो क्रांति वाले अलग हो गए। तीसरी क्रांति वाला हिंदू धर्म अभी जिंदा है।
उसका क्या नाम है?
उसका नाम है वेदांत।
वेदांत क्या है?
वेदांत में भी उस भगवान के धुरे उधेड़ दिए हैं।
कौन सा वाला? जो पूजा लेता है और निहाल कर देता है। वेदांत ने चाबुकों से और हंटे से मार मार कर उस भगवान को उखाड़ दिया है।
कौन से भगवान को? भगवान की उस मान्यता को जो यह कहती है कि लीजिए मिठाई खाइए और प्रसाद खाइए और बेटा दे जाइए, 11 माला जप करवा लीजिए और निहाल कर दीजिए। वेदांत की क्रांति। हिंदू धर्म में भगवान के जिसने धुर्रे बिखेर दिए हैं, उसका नाम है वेदांत।
वेदांत क्या है?
यमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम सि। तात्पर्य यह कि आदमी का जो परिष्कृत स्वरूप है, आदमी का जो विशेष स्वरूप है, वही भगवान है। आदमी की सुपीरियरिटी ही भगवान है। अगर आदमी की सुपीरियरिटी बढ़ेगी तो भगवान की कृपा उसके ऊपर आएगी, सिद्धियां उसके ऊपर आएंगी, चमत्कार उसके ऊपर आएगा। भगवान का असली स्वरूप आदमी के अंतरंग में अवस्थित है।
अंतरंग अगर घिनौना है तो भगवान आपसे 1 करोड़ मील दूर है, और अगर आपका अंतरंग परिष्कृत है तो भगवान आपके सबसे नजदीक है।
आस्तिक कौन, नास्तिक कौन? मित्रों, भक्ति की फिलॉसफी, आस्तिकता की फिलॉसफी, पूजा की फिलॉसफी, सारी की सारी फिलॉसफियों को आप इस गायत्री मंत्र में समाविष्ट देख सकते हैं, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ किया गया है सर्वव्यापी भगवान, न्यायकारी भगवान, भक्तवत्सल भगवान और रुद्र भगवान।
आप इन सबको मिला लें तो आपकी आस्तिकता सर्वानुपूर्ण हो जाती है।
अगर आपको आस्तिक रहना होगा तो, और नहीं रहना होगा तो,
आप दोनों में से फैसला करेंगे कि आस्तिकता का स्वरूप यह है और नास्तिकता का स्वरूप यह है।
नास्तिक क्या है? नास्तिक माने आस्थाओं से इनकार करने वाला। आस्थाओं से इनकार माने विश्व व्यवस्थाओं से इनकार करने वाला। नास्तिक माने कर्म व्यवस्था से इनकार करने वाला।
जो आदमी यह कहता है कि गंगा जी में नहा करके पाप दूर हो जाते हैं, उसका नाम है नास्तिक।
क्योंकि प्रकारांतर से यह कहता है कि हमको पापों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा।
जो सनातन विशेषताएं थीं, शाश्वत विशेषताएं थीं, जो अध्यात्म का तत्व ज्ञान था, वह इसीलिए मना करता है कि कर्मफल से आप बच नहीं सकते और ये नास्तिक कहता है कि कर्मफल से हम बच सकते हैं, गंगा जी नहाने से पाप दूर हो सकते हैं।
गायत्री मंत्र की प्रमुख शिक्षा। मित्रों,
गंगा नहाने से पाप करने की वृत्ति दूर हो जाए, यह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पापों के दंड दूर हो जाएंगे तो फिर आदमी पाप करता ही चला जाएगा।
इसलिए कर्मफल की व्यवस्था, यह गायत्री मंत्र का पहला वाला चरण है।
इसे आप स्वयं समझना और हर आदमी को व्याख्या करना, उनसे कहना कि गायत्री मंत्र ऋषियों की वाणी है।
प्राचीन काल का तत्वज्ञान यह समझाता है कि भगवान की प्रसन्नता कर्मफल वाले विश्वास पर टिकी हुई है, भगवान की नाराजगी कर्मफल पर टिकी हुई है, भगवान का अनुग्रह कर्मफल पर टिका हुआ है, भगवान का प्यार कर्मफल पर टिका हुआ है, पूजा पर नहीं। पूजा का उद्देश्य यही है, कर्मफल के बारे में आदमी की आस्थाओं को परिपक्व करना और आदमी के भीतर वह विश्वास पैदा करना जिससे कि भगवान के बारे में आदमी का दिमाग साफ हो जाए।
यह क्या है?
ओम भूर्भुवः स्वः की शिक्षा, जिसे मैंने आपसे निवेदन किया, इसी का नाम है आस्तिकता, आध्यात्मिक त्रिवेणी। मित्रों,
चलिए अब और आगे चलिए। अब दूसरा वाला हिस्सा आता है जिसको आध्यात्मिकता कहते हैं।
एक तीसरा वाला हिस्सा है आध्यात्मिकता और धार्मिकता। इन तीन सिद्धांतों को मिला करके त्रिवेणी त्रिपिटक गायत्री बनाई गई है।
इसमें लोक शिक्षण के लिए आपके लिए पर्याप्त मसाला है।
आप जिंदगी भर इनकी व्याख्या करते रहिए और दृष्टांत देते रहिए और इसके साथ साथ में प्रमाण पेश करते रहिए।
इनमें से आप कुछ भी पेश करते रहिए, इन्हीं तीन बातों में दुनिया का सारा आधार टिका हुआ है।
आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता बेटे वह है जो आदमी के व्यक्तित्व और चरित्र एवं आदमी के दृष्टिकोण को परिष्कृत करती है और मार्गदर्शन करती है कि आदमी का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए।
इसमें क्या किया गया है? इसमें भगवान के चार नाम लिए गए हैं और एक बात यह बताई गई है कि जिस चीज को हम भूल गए हैं उसको हमें याद करना चाहिए।
आध्यात्मिकता का प्रथम चरण तत्। मित्रों, गायत्री के इस आध्यात्मिकता वाले चरण में पहले आता है तत्।
तत् किसे कहते हैं? तत् कहते हैं किसी दूर पर रहने वाली चीज के लिए इशारा करते हैं और अंगुली से कहते हैं वह।
तत् का यही अर्थ है।
तो इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया कि वह हम सबके सामने छाया हुआ है। यह माने सामने वाली चीजें, प्रत्यक्ष भौतिक चीजों के अलावा आदमी की इच्छा में और कुछ है ही नहीं।
इसके अलावा वह हमको याद ही नहीं आता। वह कौन? वह बेटे, परलोक, अगला जन्म, पुनर्जन्म। वह भगवान, वह उद्देश्य, वह आदर्श, वह अंतरात्मा। यह परोक्ष है और हमको इसका ध्यान ही नहीं रहता।
24 घंटे प्रत्यक्ष ही दिखता है। कल्पना में प्रत्यक्ष, चलने में प्रत्यक्ष, खाने में प्रत्यक्ष, तुरंत की बात, तत्काल की बात दिखाई पड़ती है।
यह अर्थात संसार, अर्थात भौतिक पदार्थ, सारे के सारे जीवनक्रम में भीतर से लेकर बाहर तक यही हमारे रोम रोम में छा गई है।
आध्यात्मिकता हमसे लाखों मील दूर है। सिद्धांत हमसे लाखों मील दूर हैं। आदर्श हमसे लाखों मील दूर हैं। भावनाएं हमसे लाखों मील दूर हैं और निष्ठाएं हमसे लाखों मील दूर हैं और जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश था वह दूर है।
यह भी और वह भी दोनों संभालें। मित्रों, इसलिए गायत्री मंत्र में इशारा किया गया है कि तत् वह को आप देखिए तो सही,
इसे भी जीवन में रखिए, भूलिए मत।
वह कौन? इसमें व्यक्ति का भविष्य भी आता है, परमात्मा भी आता है और जो प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है, वह तत् सारे के सारे इशारे कर देता है। गायत्री के तत् शब्द में यही व्याख्यान है। आप इसे दुनिया भर को समझाना कि वह की भी सोचिए, यह तक ही सीमित मत रहिए। यह को तो संभालिए ही, पर वह को भी संभालिए। वह को संभाल लेंगे तो यह ठीक हो जाएगा, वह को आप संभाल नहीं पाएंगे तो यह भी ठीक नहीं हो सकता। चार नाम चार शिक्षाएं। मित्रों के चार नाम हैं, भगवान के चार मुख हैं,
ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और उनके चार वेद हैं। भगवान के चार नाम आप याद रख लें तो काफी है। सहस्र नाम भी हो सकते हैं, 28 नाम भी हो सकते हैं, 108 नाम भी हो सकते हैं, पर गायत्री में चार नाम आप लें और चारों के भीतर जो चार गुण बताए गए हैं उन्हें अपने भीतर धारण करते चले जाएं। वे क्या हैं?
सवितु, वरेण्यम, भर्गो, देवस्य, बस यही चार नाम हैं इसमें।
इन चार नामों में क्या है? चार शिक्षाएं हैं, चार आदेश हैं, आपके लिए चार दिशाएं हैं, आपके लिए चार कर्तव्य हैं, चार वर्ण, चार आश्रम, जो कुछ भी आप मान सकते हैं, चार वेद, चार दिशाएं, चार धातुएं भगवान के इन चारों नामों में भरी हुई पड़ी हैं।
भगवान के ये चार गुण हमारे लिए अति आवश्यक हैं।
भगवान में तो लाखों गुण हैं, तो क्या वे सब हमारे लिए आवश्यक नहीं हैं? बेटे, आप चार गुणों को ही ग्रहण कर लें और उन चारों को जीवन में उतार लें, तो आपका भला हो सकता है और आप वास्तविक अर्थों में भक्त कहला सकते हैं।
सवितावान बने।
इन गुणों में पहला कौन सा है?
सवितु, सविता। सविता भगवान का नाम है। सविता के अंतर्गत दो बातें आती हैं, रोशनी और गर्मी।
इन विशेषताओं वाला भगवान जिसको हम सविता कहते हैं,
इसकी यह दो विशेषताएं हमारे जीवन में रहनी चाहिए, रोशनी रहनी चाहिए। रोशनी का अर्थ है हमारी ख्याति, हमारा यश, हमारा प्रभाव और हमारा वर्चस्व। हमारा जीवनक्रम ऐसा हो जो प्रकाश फैलाता हुआ चले,
जो दीपक के तरीके से प्रकाश फैलाए, समुद्र में खड़े हुए प्रकाश स्तंभों के तरीके से प्रकाश फैलाए,
टिमटिमाते हुए तारों के तरीके से प्रकाश फैलाए, चांद और सूरज के तरीके से प्रकाश फैलाए,
हमारे अंतरंग जीवन में और बहिरंग जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाए।
अंधकार में हम ठोकर खाते फिरते हैं, अतः बार बार ठोकर न खानी पड़े, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमारे भीतर से प्रकाश, हमारे जीवन में प्रकाश, हमारे दृष्टिकोण में प्रकाश ही प्रकाश भर जाए।
अभी तो हमारे जीवन में घोर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, तमस हमारे भीतर छा गया है। इस तमस का निराकरण करने के लिए प्रकाश और गर्मी की आवश्यकता है।
श्रेष्ठ का वरण।
गर्मी से क्या मतलब है?
गर्मी से मतलब है बेटे पराक्रम और पुरुषार्थ।
आपका पराक्रम चला गया, पुरुषार्थ चला गया और आपके पास केवल ज्ञान रह गया,
तो यह ज्ञान कर्म के बिना अधूरा है, पुरुषार्थ के बिना भक्ति अधूरी है। इसलिए पराक्रम और पुरुषार्थ भक्ति के साथ जुड़ा रहना चाहिए। अग्रत चतुरो वेद पृष्ठ सश्रम धनो इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रापि शरापि। हमारे ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय होना चाहिए।
यह शिक्षण कौन करता है? यह करता है सविता, जो रोशनी और गर्मी दोनों का प्रतीक है।
सविता के गुण, सविता के कर्म, सविता के स्वभाव, सविता के संदेश की हमको नकल करनी चाहिए। अब आता है वरेण्यम। वरेण्यम क्या है? वरेण्यम है श्रेष्ठ का चुनाव, वरण कर लेना।
ब्याह शादियों में जैसे वरण कर लेते हैं, पंडित का वरण कर लेते हैं, अर्थात जिसको बांध लिया, अपना लिया, ग्रहण कर लिया।
इसका एक अर्थ यह है और वरेण्य का एक अर्थ श्रेष्ठ है, अर्थात वरेण्य माने श्रेष्ठ, वरेण्यम माने किसी को पकड़ लेना, बांध लेना, अपना लेना। यही दो अर्थ वरेण्यम के हैं।
क्या है कि दुनिया में दो तरह की मिली हुई चीजें आपके सामने रखी हैं, एक छोड़ने योग्य और एक ग्रहण करने योग्य,
एक वरेण्य और एक त्याज्य।
दो चीजें हैं आपकी थाली में।
देखिए साहब, इसमें वरेण्य भी है और बिना वरेण्य भी है, आपके सामने निष्कर्ष भी विद्यमान है।
अब आप कार्यों में से, व्यक्तियों में से, मित्रों में से चुनाव कीजिए। हर जगह आप देखेंगे कि दोनों का समन्वय रखा होगा।
संस्कृति वरेण्य वृत्ति। मित्रों, आपके भीतर एक ऐसा विवेक होना चाहिए जिसमें से वरेण्य को चुन लें, श्रेष्ठ को चुन लें, आदर्शों को चुन लें, उत्तम को चुन लें,
और जो आदर्श नहीं है, उत्तम नहीं है, निकृष्ट है, उसको ठोकर मारते हुए चले जाया। नहीं साहब,
आपकी हमको जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। नहीं भाई साहब,
हम आकर्षक हैं, आप आकर्षक हैं, तो रहें, हम क्या कर सकते हैं।
हमको तो वरेण्य ही स्वीकार है, आदर्श स्वीकार्य है,
औचित्य स्वीकार्य है, और जो बिना औचित्य के है उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपको दबाव डालना हो तो दबाव डाल सकते हैं और आप चाहें तो हमको लुभाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका लोभ और आपका दबाव, इन दोनों में हम आने वाले नहीं हैं।
हम केवल वरेण्य को ही ग्रहण करेंगे।
जैसा कि हमने इस बावत कहा था कि हंस केवल वरेण्य को ही ग्रहण करता है और जो नगण्य होता है उसे छोड़ देता है।
भगवान की वह वृत्ति जिसके लिए इसका नाम वरेण्य रखा गया है, यह हमारे वृत्ति का, स्वभाव का अंग होना चाहिए, हमारे आदर्शों में इसका स्थान होना चाहिए। पाप वृत्ति को भून डालें। भर्गो, यह भर्ग क्या है? भर्ग कहते हैं भून डालने को। क्या भून डालना?
देखो, भरभूजा भाड़ में जिस तरह से चने डालता है और वे भर भर करते हैं न?
हाँ साहब,
करते हैं।
बस तू समझ ले कि भर्ग का अर्थ उससे मिलता जुलता है।
यूं तो भर्ग के कई अर्थ होते हैं। संस्कृत में भर्ग को तेजस्वी भी कहते हैं, पर यहाँ पर मैं सबसे सरल अर्थ बताता हूँ।
वह सबसे सरल अर्थ है भून डालना।
इसका क्या अर्थ है? भून डालने से यह अर्थ है कि इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पोषण के लिए आवश्यक हैं,
उन्हें पानी देना चाहिए।
हर चीज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हर एक पर दया करेंगे, हर एक की सेवा करेंगे,
हर एक को पुण्य करेंगे।
बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से चुनकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका संवर्धन करना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी मारकाट और तोड़ मरोड़ करनी चाहिए।
नहीं साहब, सबका भला करना चाहिए।
नहीं बेटे, सबका भला नहीं हो सकता।
एक का बुरा होगा तो दूसरे का भला होगा। चाहे पाप हो, चाहे अनाचार हो, चाहे अनीति हो, चाहे अत्याचार हो, इसके विरुद्ध हमको सीना तान करके लड़ने के लिए भी खड़ा हो जाना चाहिए। अवतार के दो ही उद्देश्य। मित्रों,
भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनके सामने दो उद्देश्य रहे हैं।
एक उद्देश्य यह रहा है अच्छाई को बढ़ाना और दूसरा बुराई को मारना।
मारना भी उनका काम रहा है, परिपोषण भी काम रहा है।
नहीं साहब, हम तो परिपोषण करेंगे। किसका परिपोषण करेगा? सबका करेंगे।
कसाई का भी करेंगे और चांडाल का भी करेंगे, चोर का भी करेंगे, लुच्चों का भी करेंगे। बेटे, ऐसा नहीं हो सकता।
तू बिच्छू को पालेगा तो वह बच्चे को डंक मारेगा। बच्चे को जिंदा रखना है तो बिच्छू को मार।
दुनिया में जो अनीतियाँ हैं, पाप हैं, अनाचार हैं, अत्याचार हैं, उनके विरुद्ध लोहा लेना भी अध्यात्मवादी का काम है।
नहीं, सबका ही पोषण करना चाहिए बेटे, सबका नहीं करना चाहिए।
किसने कहा तुझसे कि सबका पोषण करना चाहिए?
अरे साहब, वह बाबाजी कह रहा था। बाबाजी को मारा नहीं।
नहीं साहब,
वह कह रहा था कि सबका पोषण करना चाहिए, अनीति का भी, नीति का भी, अनुचित का भी और उचित का भी। सबके सब भगवान थे।
कौन से?
मंथरा भी भगवान थी, कैकेयी भी भगवान थी और कौशल्या भी भगवान थी, और रावण भी भगवान था।
चुप।
जाहिल कहीं का रामायण की व्याख्या करने चला है। बुद्धू कहीं का?
नहीं साहब,
रावण भी भगवान था और वह भगवान का वैर करके भक्ति कर रहा था, और भरत जी प्यार करके भक्ति कर रहे थे। रावण डर कर भक्ति कर रहा था।
चुप कर, जीभ को बंद रख।
लोगों को बहकाता है, अनीति के प्रति लोगों के क्षोभ और रोष को बंद करता है, रावण के प्रति घृणा भाव खत्म करता है।
नहीं साहब,
वह भक्त था, कैकेयी भक्त थी और वह फलानी भक्त थी।
चल,
बड़ा आया बुद्धिजाल फैलाने वाला। देवत्व का संवर्धन।
मित्रों, क्या करना पड़ेगा? आपको दो धाराओं की जानकारी रखनी पड़ेगी। एक धारा संसार में ऐसी है जिसका परिपोषण करना चाहिए, और एक धारा ऐसी है जिसका हमें निराकरण करना चाहिए।
उससे लोहा लेना चाहिए, लड़ना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए,
असहयोग करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया में गुंडागर्दी बढ़ेगी।
सबका परिपोषण करेंगे, सबका भला करेंगे, सबको खाना खिलाएंगे, सबको पानी पिलाएंगे और सबको ठहराएंगे, तो उसका लाभ गुंडे उठाएंगे, चोर उठाएंगे, बदमाश उठाएंगे और भले आदमी मारे जाएंगे। आध्यात्मिकता का एक लक्ष्य यह भी है जिसको भर्गो कहा गया है। चौथे वाले भगवान का नाम है देवस्य।
देवस्य किसे कहते हैं?
देवस्य कहते हैं दिव्य को और देने वाले को। आदमी के भीतर दो विशेषताएं होनी चाहिए।
भगवान के भीतर भी दो विशेषताएं हैं। अगर आप भक्त हैं, अध्यात्मवादी हैं, तो आपको अपने जीवन में दिव्यता को धारण करना चाहिए और देने वाला होना चाहिए।
आपको देवता बनना चाहिए। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण ही प्रज्ञावतार का मुख्य उद्देश्य है। दिव्यता को धारण किए बिना आप इसे चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गायत्री महामंत्र के तत्स्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य के चारों गुणों को जीवन में धारण करें और व्यवहारिक धरातल पर चरितार्थ करें। बस आज की बात समाप्त। ओम शांति। नोट: परम पूज्य गुरुदेव ने इस उद्बोधन का उत्तरार्ध धीमहि धियो यो न प्रचोदयात की व्याख्या के रूप में अगले दिन दिया था, जो योगवश उपलब्ध नहीं है। संपादक।